पृष्ठ संख्या 51। संधिगत बंदरगाह प्रथा की सही प्रकृति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि व्यापारियों ने इसे अपने मंसूबे पूरे करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पेल्कोविट्स का कहना है कि असमान संधियां व्यवसायियों द्वारा सरकार पर निरंतर दबाव का परिणाम थी, ताकि चीनी सीप को खोलकर उसमें से मोती बाहर निकाल लिया जाए। मीन्स टू प्राइज ओपन द चाइनीज ओएस्टर एंड डिस्कवर द पियर विद इन। गैलेगर और रॉबिन्सन मानते हैं कि साम्राज्यवाद की प्रकृति मुख्य तौर पर क्षेत्र विशेष और समय विशेष में राजनीतिक और आर्थिक तत्वों के संदर्भ में विभिन्न और परिवर्तित हो रहे संबंधों से निर्धारित होती है। द करेक्टर ऑफ इम्पेरियलिज्म इज लार्जली डिसाइडेड बाई द वेरियस एंड चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन इन एनी पार्टिकुलर रीजन एंड टाइम। अतः सिर्फ आर्थिक तत्वों के होने से साम्राज्यवाद का आर्थिक लक्ष्य पूरा नहीं होता, साथ ही राजनीतिक तत्वों की मदद जरूरी है। यहाँ तक कि सेना का इस्तेमाल भी व्यापारी मानते थे कि उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु आर्थिक कारणों से अवरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को वाणिज्य मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सरकार के समक्ष लिखित रूप में रखा। विदेशी व्यापारियों ने यह अनुभव किया कि थियनचिन की संधि 1858 ईस्वी को सही तरीके से लागू करने के पश्चात ही व्यापारियों को आंतरिक शुल्कों से मुक्ति मिलेगी और वे चीन में व्यापार और निवास कर सकेंगे। ब्रिटेन ने चीनी बाजार का सही प्रयोग करने के लिए चीनी सरकार पर प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए दबाव डाला, ताकि चीन के बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएं। पृष्ठ संख्या 52। असमान संधियों का सबसे ज्यादा दबाव चीन के व्यापार पर पड़ा। अफीम युद्ध ने चीन में व्यापार विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। चीन में 1817 ईस्वी में 1.7 करोड़ तायलो और 1863 ईस्वी में 6.93 करोड़ तायलो के मूल्य के बराबर का निर्यात हुआ। इसी बीच अफीम का निर्यात 30 लाख तायल से बढ़कर 3.2 करोड़ तायल हो गया। 1867 ईस्वी में आयात 6.9 करोड़ तायल और निर्यात 1867 ईस्वी में आयात 6.9 करोड़ तायल और निर्यात 5.7 करोड़ तायल के मूल्य का हुआ, तथा 1.2 करोड़ तायल का संतुलन चांदी के रूप में अदा किया गया। संधिगत बंदरगाहों पर व्यापार का नियंत्रण विदेशी हाथों में चला गया और सभी व्यापारी जहाज उन्हीं के थे। तटवर्ती व्यापार पर भी उनका ही नियंत्रण था। समुद्री किनारों पर परिवहन और संचार व्यवस्था भी उनके नियंत्रण में ही था। चीन की बैंक प्रणाली भी विदेशी हाथों में चली गई। विदेशी बैंक कागजी मुद्राओं का प्रयोग करने लगे और संधिगत बंदरगाहों पर उन्हीं मुद्राओं का प्रचलन था जो मूल्य में चीनी मुद्राओं के समान थी। इस तरह विदेशियों ने चीन की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण कर लिया। जमींदारों, कंपरादोरों और सूदखोर व्यापारियों की सहायता से विदेशियों ने चीन के वाणिज्यिक और आर्थिक जीवन पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। उन्होंने चीन के 80 से 90% भारी उद्योगों, परिवहन एवं संचार और वस्तु बाजार पर नियंत्रण कर लिया। 1891 ईस्वी में 30 से भी अधिक विदेशी कंपनियां संधिगत बंदरगाहों के बीच सामान ढोने का काम करवा रही थी, अर्थात 70% परिवहन उनके हाथ में थे, और उस साल 2.8 करोड़ टन सामान ढोया गया, जबकि 1885 ईस्वी में 1.8 करोड़ टन सामान ढोया गया था। उनकी सेनाओं की टुकड़ियां चीन के छोटे बड़े शहरों में फैली हुई थी। यहाँ तक कि राजधानी पेइचिंग में भी चीन सिर्फ कहने भर को ही स्वतंत्र देश था। पृष्ठ संख्या 53। संधिगत बंदरगाह प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी चीनी सीमा शुल्क पर विदेशी नियंत्रण। 1854 ईस्वी में सीमा शुल्क निरीक्षणालय का प्रशासन विदेशी हाथों में चला गया। अधिकतर पश्चिमी विद्वानों ने यह दलील प्रस्तुत की है कि सीमा शुल्क पर विदेशी नियंत्रण का मुख्य कारण चीनी अधिकारियों का भ्रष्ट होना था, न कि सीमा शुल्क का ज़्यादा होना। स्टैनले राइट का कहना है कि ज़्यादातर विदेशी व्यापारी पूर्ण रूप में तिक्रमी व्यक्ति थे और चीन की इन बुराइयों का उतना ही फायदा उठाना चाहते थे जितना कि चीनी स्वयं। द फॉरेनर्स मैनी ऑफ होम वेयर इन द वाइल्डेस्ट सेंस ऑफ द टर्म मर्चेंट एडवेंचरस वेयर एज विलिंग टू प्रॉफिट बाई दिज अब्यूजेज एज द चाइनीज देमसेल्व्स। चीन में भ्रष्टाचार के बावजूद भी सीमा शुल्क की दर बहुत ऊंची नहीं थी। मॉरिसन ने दिखाया है कि अफीम युद्ध के पहले चाय पर शुल्क 2.5 तायल प्रति पिकल था, जबकि सस्ती से सस्ती चाय भी 10 तायल प्रति पिकल बिकती थी। 1806 ईस्वी में चौरे कपड़े का भाव 4 तायल प्रति गज था, जबकि उस पर सीमा शुल्क की दर मात्र 10% थी। ब्रिटेन की तुलना में चीनी सीमा शुल्क की दर बहुत कम थी। 1847 ईस्वी में इसे बढ़ाकर साधारण चाय पर 200% और उत्तम चाय पर 300% कर दिया गया था। यूरोपियनों द्वारा सीमा शुल्क नियंत्रण हथियाने के पीछे वास्तविक कारण यह था कि सीमा शुल्क व्यवसायियों के लिए चीन का द्वार खोलने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र था। सीमा शुल्क सेवाओं का कार्य केवल आयात निर्यात करों की वसूली करना ही नहीं, बल्कि संशोधन कार्य, बंदरगाहों पर रहने वाले लोगों में पनपी बीमारियों का अध्ययन, समुद्री किनारों का भौगोलिक सर्वेक्षण, बंदरगाहों तथा नदियों की देखरेख और जहाजरानी से संबंधित कई कार्यों को बढ़ावा देना भी उन्हीं के कार्य थे। 1858 ईस्वी के बाद आयात निर्यात कर देशी व्यापारियों पर 5% यथा मूल्य तय कर दिया गया और यह भी तय हुआ कि इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त कर देशी वस्तुओं पर नहीं लगाया जाएगा। इसका अर्थ यह था कि देशी वस्तुओं की तुलना में विदेशी वस्तुएं सस्ते दामों पर बिकेंगी। यदि चीन को रक्षक सीमा शुल्क लगाने की अनुमति होती तो शायद वह स्वयं अपना उद्योग बढ़ा लेता। सिमोनोसेकी की संधि और बॉक्सर प्रोटोकॉल के बाद चीन को भारी रकम अदा करनी पड़ी थी। इस प्रकार से जो भी पैसा चीन ने राजस्व के रूप में जमा किया वह भी विदेशियों की जेब में चला गया। सभी महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर चीनी सीमा शुल्क अधीक्षक कमिश्नर ऑफ कस्टम्स नियुक्त किया गया, जिसका वेतन भी चीन देता था। रॉबर्ट हार्ट को 1863 ईस्वी में छिंग सरकार के नौवहन सीमा शुल्क निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ मैरीटाइम कस्टम्स में इंस्पेक्टर जनरल की हैसियत से नियुक्त किया गया, जो बाद में लगभग वित्त और विदेश मंत्री का काम करने लगा था। थानचुंग के अनुसार रॉबर्ट हार्ट और उनकी सीमा शुल्क सेवा साम्राज्यवाद की दो धार वाली तलवार की तरह थी। इसकी एक धार पश्चिमी आयातों का, जिनमें अफीम भी शामिल था, का बचाव करती थी और दूसरी चीन को कर्ज की गहरी खाई में ढकेल रही थी। पृष्ठ संख्या 55। संधिगत बंदरगाह प्रथा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी देशोत्तर अधिकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। इसके अनुसार विदेशी अपने दूतावासों के न्याय के प्रभुत्व के सामने ही प्रस्तुत किए जा सकते थे। दूसरे, चीनी नागरिकों को रियायती क्षेत्रों में बसने का अधिकार नहीं था, सिर्फ विदेशियों के नौकर के रूप में ही वे वहां रह सकते थे। देशोत्तर सिद्धांत के जरिए विदेशियों ने चीन के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की। चीनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लोग उनकी शरण में आ जाते थे और वे उनका बचाव करते थे। उन क्षेत्रों में विदेशी कानून ही लागू होते थे, अतएव चीनी सरकार उनको सजा नहीं दे सकती थी। ईसाई मिशनों को भी यहाँ ईसाई बन चुके और गैर ईसाई चीनियों के बीच के झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार था। देशत्तर सिद्धांत को सही साबित करते हुए लगभग सभी पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि चीनी न्यायिक व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी। कोई शक नहीं है कि चीनी न्याय व्यवस्था बहुत ही प्राचीन थी, किंतु विदेशी विद्वानों ने अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर कही है। चीन ने अपनी न्याय व्यवस्था को विदेशियों के संदर्भ में हमेशा बहुत हद तक उदार दृष्टिकोण से उपयोग किया था। उदाहरण के तौर पर लेडी ह्यूज के मामले में चीन ने ब्रिटेन के दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। रियायती क्षेत्र में रहने का सही अर्थ यह भी नहीं था कि कोई भी विदेशी व्यक्ति चीनी कानून का उल्लंघन करे। विदेशी अपने रियायतों का अनुचित लाभ उठाते थे और देशांतर अधिकार का फायदा उठाकर कई बार कानून का उल्लंघन करने वाले हत्यारे इत्यादि भी सजा से बच जाते थे। पश्चिमी विद्वानों ने बड़े गर्व के साथ यह प्रचलित किया है कि उन्होंने देश का परिवार समूह फैमिली ऑफ नेशंस बनाया जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन था और चीन भी उसमें शामिल था, किंतु वस्तुतः कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किसी और देश की सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और देशांतर अधिकार प्रणाली इस कानून का उल्लंघन थी। अतः संधिगत बंदरगाह प्रणाली के अंतर्गत बलपूर्वक चीन पर विदेशी शासन किया गया और उसकी संप्रभुता भंग की गई। चीन अब यूरोप के राष्ट्रों के बड़े परिवार समूह का एक निचले दर्जे का सदस्य बन चुका था। संधिगत बंदरगाह पश्चिमी साम्राज्यवाद की आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सर्वोच्चता दर्शाते हैं। इनके जरिए पश्चिमी देशों ने न केवल चीन का शोषण किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों का बढ़ावा दिया। असमान संधियों के सहारे पश्चिमी देश चीन पर शासन करने लगे। माइकल एडवर्ड्स के शब्दों में, चीन बिना विजित हुए ही साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। चाइना बिकेम द विक्टिम ऑफ इंपीरियलिज्म विदाउट एन एनेक्सेशन।